का था, रूह वही रूप नया।
गाथा पे आप सुन रहे हैं नज्म सुभाष जी की लिखी कहानी इम्तिहान। शमा की रोशनी को बेहद कम करने के बावजूद नजीरन को महसूस हुआ जैसे आंखों के रास्ते ये मुई जहन में उतर कर उसके वजूद को झिझोड़ रही है। यूं तो अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, यही कोई 8 बजे होंगे, मगर जब दिल में गमों का दरिया हिलोरे मार रहा हो तो एक एक लम्हा भी सदियों सा गुजरता है। 30 साल हंसी खुशी गुजर जाने के बाद आज एक ही पल में ऐसा क्यों हो गया, मानो सब कुछ तहस नहस। आज उसे खुद पर अफसोस हो रहा है, मगर अब वो कर भी क्या सकती थी, तीर तो कमान से निकल चुका था। इतने बड़े कोठे का मालिक मुश्ताक न जाने कहां और किस हाल में दरबदर ठोकरे खाकर भटक रहा होगा। अब वो सोचती है आखिर उसने क्यों इम्तिहान लिया, क्या जरूरत थी, मगर क्या वाकई में वो जिम्मेदार है, उसने खुद से ही पूछा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब मिल ना सका। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, रूई से भी नर्म बिस्तर जैसे बबूल के कांटों में तब्दील हो गया था। वो लगातार करवटें बदलती रही, मगर बेचैनी कम होने का कोई आसार ही नजर नहीं आ रहा था। वो तख्त से उठी, करीब ही मेज पर रखे लोटे का पानी एक गिलास में डाला और होंठों से लगा लिया। कमबख्त जैसे हलक सूख गई थी। पानी पीने के बाद उसने गिलास रख दिया और बालों की उलझी लटों को अपने हाथों से दुरुस्त करके कानों पर चढ़ा लिया। एक नजर चारों ओर घुमाई, एक ही दिन में जैसे कोठरी की सारी दीवारें बदरंग हो चुकी थी, अन्यथा कितनी खिली खिली रहती थी। साकों की पटावदार छत जैसे जर्जर हो गई थी, लगता था कभी भी भरभरा कर गिर सकती है, और वो भी तो जर्जर हो गई थी, बस भरभराना बाकी था। उसकी तो जिंदगी का आधार ही छिन गया था। बहुत कुछ था जो एक ही दिन में छीज गया, जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई, नीम अंधेरे में महसूस हुआ मुश्ताक खड़ा है, मगर नहीं, दरवाजा तो बंद था, वहां तो उसकी परछाई तक नहीं थी। अब तो शायद ही कोई उससे पूछे, इजाजत हो तो तुम्हारे करीब आ जाऊं, पर वो पहले खिलखिलाए और फिर कहे, तो क्या हमारे करीब आने के लिए अब इजाजत चाहिए। उसका इतना कहना भर होता था कि मुश्ताक उसकी ओर बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में समेट लेता था। उफ, अब तो जैसे ये सारे एहसास तक धूमिल हो रहे हैं। उसे याद आया जब वो मात्र 14 साल की थी, तब उसे सुल्तानपुर से यहीं इसी कोठे पर लाकर 3,000 रुपए में बेचा गया था। इस कोठे की मालकिन अम्मा जान ने गिनकर 3,000 रुपए दलालों को दिए, फिर उसकी ओर गौर से देखकर आगे बढ़कर उसका माथा चूमते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली, जानती हूँ बेटी, ये जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है, मगर तुम हम पर इतना भरोसा कर सकते हो कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कोई छू ना सकेगा। लेकिन हाँ, इस हकीकत को जल्द से जल्द कबूल कर लेना कि अब यही तुम्हारा घर है। और वो सहमी सहमी अकबकाई से इस नई दुनिया को समझने की कोशिश में लगातार फर्श को घूरे जा रही थी। उसके भविष्य का फैसला तो उसी वक्त हो चुका था जब वो घर से शौच के लिए निकली थी और उसे दो मर्दों ने पकड़कर जबरदस्ती न जाने कौन सी बूटी खिला दी थी। वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो एक छकड़े पर थी, मगर वो चाह कर भी ना समझ सकी कि अब उसकी मंजिल कहाँ है। इस बड़ी सी कोठी नुमा हवेली को अम्मा जान ने अपने किसी आशिक से झटक लिया था। जवानी में क्या गजब ढाती होंगी अम्मा जान। यूं तो कोठी पर सब उन्हें अम्मा जान ही कहते थे, मगर उनका असली नाम गुलबदन था। लखनऊ की मशहूर रंडियों में उनका शुमार था। न जाने कितने रईसजादे उनके कदमों में पड़े रहने के एवज में फकीर बन के लखनऊ की गलियों की खाक छानने लगे। लखनऊ में भला ऐसा कौन होगा जो उनके दीदार का तलबगार ना हो। उस आशिक ने भी दिल के हाथों मजबूर होकर ये कोठी उन पर लुटा दी थी। ये दो मंजिला कोठी ऐसी थी कि इसके चारों ओर कमरे बने थे और बीच में एक बड़ा सा आंगन। इसी कोठी को बाद में कोठे में तब्दील कर दिया गया। एक बड़े हॉल को शीश महल का रूप दे दिया गया, जहां शाम होते ही संगीत की महफिलें सजती। नवाब, नवाबजादे और रईसों का शाम से ही तांता लगा रहता। दिन भर उबासी लेती ये सकरी सी गली शाम होते ही दुल्हन की तरह जगमगा उठती। अम्मा जान ने ऊपर का कमरा उसे दिया था और हैदरी को कोठे के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी भी। उसे किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए एक नौकरानी भी रख दी थी। अम्मा जान ने कोठे पर उसे नया नाम दिया, नजीरन। उसे रोज सुबह केसर और बादाम मिला दूध दिया जाता और देसी घी में पकाया हुआ जायकेदार भोजन। एक साल में ही उसका रूप बागुन की गमकती धूप सा खिल गया। पूरे शहर में नजीरन के चर्चे होने लगे। लखनऊ के एक से एक नवाबजादे उसके दीदार को मुंह मांगी कीमत देने के लिए अम्मा जान के सामने हाजिर थे, मगर उसने अम्मा जान से एक डेढ़ साल इन सब से दूर रहने की मोहलत मांगी थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। वैसे भी कोठे के तौर तरीकों में अभी वो कच्ची थी और कच्चा काम अम्मा जान को कभी पसंद ही ना आया। उन्हें बखूबी पता था कि नवाबजादों की बेचैनी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही उनका फायदा होगा। आखिर उन्होंने पूरी उम्र यही सब दांव पेच सीखने में तो बिताए थे, अब तो बालों पर सफेदी भी उतर आई थी। सुबह को एक मौलवी साहब उसे उर्दू लफ्जों के बर्ताव के तौर तरीकों के साथ गुफ्तगू का अंदाज सिखाते, तो शाम को दो घंटे हारमोनियम और तबले की थाप पर घुंघरुओं के साथ उसकी जोर आजमाइश होती। इन सब में वो पूरा दिन हलकान रहती। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। गर्मियों के दिन थे, हर तरफ गर्मी का साम्राज्य था। कोठरी के भीतर भी मानो बस गर्मी से मामूली सी ही राहत थी। इधर कई दिन से उसे इमली खाने की तलब लगी थी, मगर आज उसकी ये मामूली सी ख्वाहिश जरा ज्यादा जोर मारने लगी। बाहर वो निकल नहीं सकती, अम्मा जान ने सख्ती से मना कर रखा था, लिहाजा वो सबीहा को खोज रही थी, मगर वो मुई कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा शायद नीचे गई होगी। वो कोठरी से बाहर निकलकर उसे बुलाने के लिए निकली तो सामने देखा एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है। हालांकि सामना तो पहली बार ही हुआ था, मगर उसकी बातें अक्सर होती थी, लिहाजा उसे खबर थी कि यह अम्मा जान का बेटा मुश्ताक होगा। उसने उसे देखा तो शर्माते हुए दुपट्टा लेने के लिए कोठरी की तरफ भागी, मगर इस बीच पीछे से आवाज आई, हुजूर, इस कदर बेरुखी, हम गैर तो नहीं। जुल्मा हल्के फुल्के अंदाज में उछाला गया था, लिहाजा वो पलटी और उसके चेहरे पर खा जाने वाली नजर डालकर बोली, क्या अम्मा जान ने आपको बताया नहीं कि जनान खाने की तरफ मर्दों का आना सख्त मना है। उसने अपनी तराशी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आपके हुस्न के बड़े चर्चे सुने थे, सोचा आज दीदार कर लूं। मगर आप तो निहायत ही मगरूर लगती हैं। उसकी त्योरियां चढ़ गईं। अजी बड़े बेशर्म हैं आप। फिर उसे लगा शायद उसने गलत जवाब दे दिया, लिहाजा मुस्कुराई। हुस्न मगरूर हुआ तभी अच्छा, दिल जले आह भर के मर जाएं।
वाह वाह, ये तो गजब कही आपने, हम मुरीद हुए।
अच्छा सच में? उसने हैरत से उसे देखा।
अरे कमाल करती हैं आप, इम्तिहान देना पड़ेगा क्या?
देना ही चाहिए, हम यकीन करें भी तो कैसे?
फरमाइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।
मुझे ना इमली खानी है, मगर सबीहा न जाने कहां मर गई, अगर आप ला सके तो। उसने तपाक से कहना शुरू किया, मगर अंतिम लफ्ज तक आते आते उसकी आवाज में झिझक सिमट गई।
मांगा तो क्या मांगा, इमली?
उसने हैरत से उसे देखा और आगे बोला,
आप कहती तो मैं चांद सितारे तोड़ लाता।
अभी चांद सितारे खाने का मूड नहीं है, अगर होगा तो जरूर बताऊंगी। उसने ये कुछ इस अंदाज में बोला कि एक जोरदार ठहाका गूंज गया।
ठीक है अभी लाता हूँ।
वो जाने के लिए बढ़ा ही था कि उसने रोक लिया। अरे ठहरो, अठन्नी तो लिए जाओ, और हाँ 10 पैसे की ही लाना, ज्यादा नहीं चाहिए। उसने उसे पैसे पकड़ाए तो वो जीने की तरफ जाकर नीचे उतर गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक दोने में इमली लेकर हाजिर हुआ।
अंदर आ सकता हूँ?
दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। हाँ आ जाइए। वो अंदर पहुंचा तो नजीरन कोई किताब पलट रही थी, करीब से देखा तो शायरी की थी। उसने दोना उसकी तरफ बढ़ा दिया। नजीरन ने दोना लेते ही एक मीठी इमली मुंह में रख ली और जोरदार चटकारा लगाया। बाकी पैसे
मेरे पास हैं।
तो वापस करो।
नहीं,
उसने आंखें ततेरी। हद है, ये तो बेईमानी है।
जो भी समझ लो।
अच्छा है, आगे से ध्यान रखूंगी, पहली बार में ही धांधली। जैसे वो खुद ही में ही बड़बड़ाई।
नजीरन एक बात कहूं?
नजीरन तीसरी इमली मुंह में डालने ही जा रही थी कि उसका हाथ रुक गया। उसने मुश्ताक की ओर देखा, वो तो बोले जा रहा था,
मैं मदरसे में रहता हूँ,
यहाँ आना मेरा बहुत कम होता है,
मगर जब से तुम्हारे बारे में सुना है एक नज़र देखने की बड़ी तमन्ना थी, आज देख लिया, दिल को बड़ा सुकून मिला है।
वो कुछ पल ठहरा, जैसे लंबी दूरी तय करने के बाद जरूरी सांसें फेफड़ों में भर रहा हो। फिर उसने नजीरन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। वो तो बस नासमझी वाले अंदाज में उसे सुनते हुए देखे जा रही थी। नजरें मिलते ही शर्मा कर उसने नजरें झुका ली। वो आगे बोला,
सच कहूं तुम बेहद खूबसूरत हो।
फिर उसने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ टटोलते हुए एक पोटली निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। ये क्या है?
ये पाजेब है।
तुम्हें कहाँ मिली?
अरे सुनार से खरीद कर लाया हूँ।
इसके लिए?
तुम्हारे लिए।
मगर क्यों? इस सवाल का सीधा जवाब देने में उसे झिझक महसूस हुई। क्या ये कुछ नहीं समझती? वो अचानक तख्त से उठा और बाहर जाने के पहले एक बार पलट कर उसने उसे देखा। वो अब भी पोटली लिए उसे कश्मकश से देख रही थी।
आज पहली बार देखा है तुम्हें, मुंह दिखाई समझ लेना,
उसने कहा और बिना जवाब सुने तुरंत बाहर निकल गया। उसके जाते ही नजीरन ने पोटली खोलकर देखी।
नई डिजाइन की इतनी खूबसूरत पाजेब, वो भी अठन्नी के बदले। वो मुस्कुराई। पहली बार उसे तोहफा मिला, वो भी इतना महंगा। उसने पाजेब तुरंत अपने पैरों में पहनकर देखी। उसे पाजेब बेहद पसंद आई थी। लगा पांव की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। वो एक टक अपने पांव को निहारती रही, जैसे खुद पर ही रीझ गई हो। उस रात मुश्ताक बार बार उसके ख्यालों में आया और वो हर बार बस कसमसा कर करवटें बदलती रही। उस दिन के बाद से तो उनका मिलना हकीकत में होने लगा। दोनों एक दूसरे में घंटों खोए रहते। कभी कभी वो फूल वाली गली से गजरे खरीद लाता और उसके बालों में गुंथ देता। दोनों के जिस्म से पसीने की उठती हुई भीनी भीनी गंध एक दूसरे को अपनी ओर खींचती। और एक दिन सब्र की उफनाती दरिया ने सारे बांध तोड़कर सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। मगर ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? अम्मा जान को पता चला तो जैसे उन्हें सांप सूंघ गया था। वो फुंकार उठी। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि नतुतरवाई की रस्म पर किसी नवाबजादे से मोटी रकम ऐठेंगी, मगर उनके अरमानों पर तो पहले ही तुषारापात हो गया। उन्होंने नजीरन को तलब किया और इस बाबत पूछा तो उसने बिना झिझक के कबूल कर लिया। अम्मा जान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। क्या इसमें तुम्हारी सहमति शामिल थी? नजीरन ने हां में सिर हिला दिया। तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं आई? उन्होंने दांत पीसे।
जिस कोठे पर शर्म लिहाज का ही सौदा किया जाता हो अम्मा जान, वहां कैसी शर्म और कैसा लिहाज। वैसे भी हमारी लाज शर्म तो उसी दिन बाजार में नीलाम हो गई थी जिस दिन हमें यहाँ बेचा गया था। आज नहीं तो कल आप भी तो हमारे शर्म लिहाज का सौदा ही करती। ये
तल्ख सच्चाई वो बोल तो गई जिसे अम्मा जान ने महसूस भी किया। मगर अगर कोठे पर ऐसी वारदातें ही होने लगीं तो क्या होगा? आज एक ने बगावत की, कल कोई और करेगा। लिहाजा वो चीखी, यहां हमारी हुकूमत चलती है, लिहाजा हमारी सहमति तो शामिल होती।
सीधे सीधे कहिए ना, आपका नुकसान हो गया।
नजीरन, तुम बदजुबानी पर उतर आई हो, अंजाम जानती हो?
मुआफी चाहती हूँ अम्मा जान, मगर आपको याद होगा आपने ही कहा था ना, बगैर मेरी मर्जी मुझे कोई छू नहीं सकता। फिर आज मेरी मर्जी का ख्याल क्यों नहीं?
जैसे किसी ने गर्म तवे पर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। वो मन महसूस कर रह गए। इसका कोई जवाब उनके पास ना था।
अब किस मुंह से उसे कटघरे में खड़ा करती? आगे उनका कुछ भी कह पाना संभव ना था, लिहाजा वो पांव पटकते हुए वहां से चली गई।
हालांकि ये कसक उनके दिल में हमेशा बनी रही कि नजीरन की बदौलत वो मोटी रकम वसूल ना कर सकी। पर इस बगावत में तो उनका अपना खून भी शामिल था।
वैसे वो चाहती तो ये बात छुपाकर किसी भी रईस ज़ादे से मोटी रकम वसूल लेती,
मगर वो वसूलों के खिलाफ जाकर बेईमानी ना कर सकी। लेकिन इस सदमे से उनके दिल को जबरदस्त धक्का लगा था।
उस दिन के बाद वो धीरे धीरे छींचती रहीं और साल भर के भीतर ही अल्लाह को प्यारी हो गईं।
नजीरन की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुंह लगातार सूखा जा रहा था। उसने एक गिलास पानी पिया और गिलास मेज पर रखकर गौर से अलमारी की ओर देखा। सामने ही संदूक रखी थी। वो उठी। कांपते हाथों से उसने संदूक को उठाया और तख्त पर रखा। किसी कश्मकश में वो कुछ पल संदूक को देखती रही, फिर उसने उसकी कुंडी खोल दी। उफ, उसके कपड़े जो कभी घर से पहनकर उस मनहूस दिन को निकली थी,
अम्मा ने ईद पर अपने हाथों से सिले थे। उसकी आंखें भर आई। ईद पर इन्हें पहनकर वो पूरे मोहल्ले में कुचाले भरकर घूमी थी। उसने उन पर एक बार अपना हाथ फेरा। मखमली सा एहसास उसकी उंगली के पोरों में उतर गया और साथ ही अम्मा का चेहरा भी, वो जैसे इन कपड़ों में गुद गया था। आंखें बरस जाना चाहती थी। उसने कपड़े किनारे रख दिए। अब एक ताबीज नजर आया जिसे एक पीर बाबा से फुकवा कर अम्मा ने उसके गले में धागे से पहना दिया था ताकि वो बुरी नजर से बची रहे, मगर कहां बच सकी। पीर बाबा की दुआएं भी काम ना आ सकी। आखिर में उसने वो पोटली उठाई, उसे खोला। पाजेब आज तक वैसी की वैसी रखी थी, बस उसमें जरा स्याहपन उतर आया था, ठीक वैसे ही जैसे आज उसके रिश्ते में उतर आया है।
आज नवाब साहब तशरीफ लाएंगे,
वाजा सरा वजीर खान बताकर गया था। उसने सुना तो मारी खुशी के उसके मन में लड्डू फूटने लगे। नवाब साहब आज बड़े दिन बाद उसके कोठे पर तशरीफ लाएंगे, उसके लिए भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। लिहाजा शीश महल के सारे गांव तकिए चादर बदल दी गईं, फर्श पर बिछे रंगीन कालीन को साफ कर दिया गया, नया पानदान और हुक्का करीने से सजा दिया गया। पीकदान के धाग धब्बे साफ कराने के लिए मुश्ताक को उसने चौक तक भेजा था। छत और दीवारें भी साफ कर दी गईं। मेहराबदार दरवाजों पर नए रेशमी पर्दे टांग दिए गए। वो बारीकी से एक एक काम का जायजा ले रही थी कि कहीं कुछ चलताऊ ना रह जाए। आदम कद आईने को झाड़ पोछ कर चमका दिया गया तो उसमें उसका सुर्ख गुलाबी चेहरा और हसीन हो उठा। जाड़े के दिन थे, आफ्ताब उनींदा सा होकर मगरिब में सोने के लिए बेताब था। शाम के 6 बजते ही नवाब साहब शीश महल में हाजिर हो चुके थे। उनकी मेहमान नवाजी का पूरा इंतजाम था। शाम रंगीन हो उठी। तबले की थाप के साथ हारमोनियम के स्वर फिजाओं में तैरने लगे और इनके साथ ही नजीरन के घुंघरुओं की झनकार अपने पूरे शबाब पर आ गई। नवाब साहब उसके हुस्न को देखकर असस कर उठे। कमर में लचक, सुरमई आंखों में हया, होंठों पर लर्जिश, गालों पर सुर्खी और संगीत की जुम्बिश पर उसके रखते उसके पांव। वो एक टक उसे देखते जाते और बीच बीच में हुक्के की नली छोड़कर हाथ लहरा लहरा कर तारीफ करते जाते। तकरीबन 1 घंटे उसके पांव लगातार थिरकते रहे और होंठों से गजलें बिखर कर शाम को मदहोशी में ढालती रही और इसी तरह वो आखिरी गजल के साथ संगीत की महफिल थमी तो उन्होंने अपने गले का हार उतारकर उसकी ओर उछाल दिया। उसने झुककर आदाब किया और एक पान उनकी तरफ बढ़ा दिया। हुजूर, खास आपके लिए। नवाब साहब ने पान लेने के बहाने उसकी उंगलियों को छुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म में सनसनी भर गई हो। उन्होंने एक नजर उसे गौर से देखा, पान को मुंह में रखा और मुस्कुराते हुए बोले, पूरे लखनऊ में मुझसे बड़ा शायद ही कोई तुम्हारा कदरदान हो। नजीरन ने सुना तो मुस्कुराई। हुजूर, इस बात से किसे इनकार, मगर मुश्ताक भी मुझे दिलो जान से चाहता है। उसने बड़े सलीके से अपनी बात रखी थी मगर नवाब साहब को बात चुभ गई। टके के आदमी से मेरी बराबरी, उन्होंने मन ही मन सोचा, फिर जरा नाराजगी दिखाते हुए बोले, मतलब हमसे भी ज्यादा। हुजूर, ऐसा हमने कब कहा, हम तो आपकी रियाया हैं, आपकी मेहरबानी बनी रहे। मगर मुश्ताक तुम्हें दिलो जान से चाहता है, अभी तुमने यही कहा ना। मुझे इस हकीकत से भी इनकार नहीं हुजूर।
तब तो आज इम्तिहान देना होगा।
कैसा इम्तिहान हुजूर?
वो सहमी, मोहब्बत का।
मोहब्बत का इम्तिहान? मैं कुछ समझी नहीं हुजूर।
नजीरन को लगा अब मामला हाथ से निकल चुका है।
उसने नाहक ही मुश्ताक का नाम ले लिया।
या अल्लाह रहम कर,
वो मन ही मन बुदबुदाई। अभी जब मैं इधर आ रहा था तो आंगन में एक मोटा लकड़ी का ठूंठ दिखा था। अगर मुश्ताक तुम्हें सच में चाहता है तो उसे लकड़ी देकर कहो कि उसे चीर कर उसके 10 टुकड़े कर दे। हुजूर, ये कैसा इम्तिहान है? कहते समय वो कसमसाई।
हम तो आज यही देखना चाहते हैं।
खैर, हुजूर की जैसी मर्जी, अभी कहती हूँ उससे।
वो कुछ देर ठहर कर सोचती रही, फिर उसने मुश्ताक को आवाज लगाई। वो हाजिर हुआ और सामने नवाब साहब को देखकर झुककर सलाम ठोका।
आज नवाब साहब को मेरे हाथ का बना हुआ हलवा खाना है और चूल्हे के लिए लकड़ियां हैं नहीं। मुश्ताक, तुम ऐसा करो, आंगन में जो ठूट पड़ा है ना, उसे चीर दो ताकि मैं हलवा बना सकूं।
लकड़ी चीरने का शऊर हमें नहीं, तुम जानती हो नज़ो।
हाँ, मैं टाल से लकड़ी ले आता हूँ, तब तक तुम और इंतजाम करो। नहीं, नवाब साहब जरा जल्दी में हैं, कितना भी जल्दी करोगे देर हो ही जाएगी। वैसे भी पुराना टूट है, दो चार कुल्हाड़ी मारोगे तो अलग हो ही जाएगा।
तुम समझती क्यों नहीं नज़ो, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमने कभी नहीं किया है।
उसके चेहरे पर उदासी उतर आई। रहने दो नजीरन, फिर कभी, अब मैं चलता हूँ। नवाब साहब उठने लगे। हुजूर, जरा ठहरिए तो,
उसने इल्तिजा करते हुए कहा तो नवाब साहब फिर बैठ गए। उसने मुश्ताक की ओर देखा, उसके चेहरे पर कश्मकश थी, मगर उसने जरा सख्ती से कहा,
मुश्ताक, आज तुम्हें ये ठूट चीरना ही है, तुम्हें हमारी कसम।
इतनी बड़ी बात?
मुश्ताक ने एक नजर नजीरन को देखा, उसका चेहरा एकदम सख्त था।
वो पलटा, भागकर नीचे पहुंचा, शमा की रोशनी तेज की और कुल्हाड़ी लेकर ठूंठ पर पिल पड़ा।
दोनों छज्जे पर आकर उसे देख रहे थे।
वो लगातार कुल्हाड़ियां चलाए जा रहा था, मगर ठूंठ पुराना होने के बावजूद टस से मस ना हुआ। कुल्हाड़ी का हर जोरदार वार वो सहता रहा, मगर उसने जैसे कसम खा रखी थी, वो चीरे जाने को तैयार ही ना था। अब तो हर वार पर चिंगारियां निकलने लगी थी। वो पागलों की तरह बिना रुके दना दन कुल्हाड़ियां चला रहा था। उसके पांव कांपने लगे, जहन में जैसे लावा भर गया था। कनपटी की नसें चटक जाना चाहते थे। जाड़े का मौसम होने के बावजूद उसके जिस्म का पसीना उफनाई गोमती की तरह बह रहा था। कुल्हाड़ियों पर कुल्हाड़ियां बरस रही थी। हर अगला वार जैसे जलजला लेकर आने वाला था। मुश्ताक पर पागलपन की इंतहा थी। बावजूद इसके अब तक ठूंठ जरा भी ना हिला था। करीब 10 मिनट बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। कांपते पांव के सहारे खड़ा रह पाना अब मुश्किल था। उसने बड़ी हसरत से पलटकर नजीरन को देखा, शायद वो उसकी हालत देखकर उसे रोक दे, मगर नजीरन के चेहरे पर तो ऐसा कोई भाव पढ़ने में वो नाकाम ही रह गया था। अलबत्ता वो तो नवाब साहब से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। उसके दिमाग की नसें चटक गईं, कुल्हाड़ी दोबारा ताबड़ तोड़ चलने लगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे उसने ठूंठ के साथ जंग छेड़ दी हो। करीब 5 मिनट बाद उसने ठूंठ के 2 टुकड़े कर दिए। पहली फतेह मिलते ही जुनून और बढ़ गया। फिर तो उसने ठूंठ का कीमा बनाकर पूरे आंगन में छितरा दिया। फिर कुल्हाड़ी एक तरफ उछाली और झटके से बाहर निकल गया। नवाब साहब हैरान थे, नजीरन से नजरें मिला सकें इतनी ताब अब उनमें नहीं थी। नजरें झुकाकर आहिस्ता से बोले, अच्छा मैं फिर आऊंगा, अब चलता हूं, और नीचे उतर गए। रात के 11 बज चुके थे। मुश्ताक का कहीं अता पता नहीं था। उसे खोज कर लाने के लिए दरबान को भेजा गया था, मगर वो नहीं मिल सका। नजीरन का एक एक लम्हा जैसे सदियों की तरह बीत रहा था। आखिर कहां गया होगा? जब तक मेरी गोद में सिर रखकर आधे घंटे लेटता नहीं, उसे तो नींद भी नहीं आती है। शायद ही इन 30 सालों में ऐसा मौका रहा हो जब मेरे बिना सोया हो वो। कई बार वो मुजरे के लिए बाहर भी गई तो भी मुश्ताक उसके साथ ही गया था। फिर क्यों नहीं आया आज? शाम से ही उसने कुछ खाया भी नहीं था। क्या खाया होगा उसने? पहला निवाला मुंह में रखते ही मेरी याद ना आई होगी क्या? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे अपने हाथों से खिलाए बिना कुछ भी खाया हो। वो पूरी रात बेचैनी में इधर उधर कोठे में भटकती रही। उसे महसूस हुआ कि वो तो मात्र एक चलती फिरती लाश है जिसकी रूह उससे जुदा हो गई है। करीब 8 बजे सुबह मुश्ताक नमुदार हुआ। नजीरन ने उसे देखा तो बदहवास सी उसकी तरफ बढ़ी और शिकायती लहजे में बोली, रात भर कहां थे तुम? मेरे बारे में जरा भी ना सोचा? वो ये सोचकर आगे बढ़ी थी कि उसके कांधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो लेगी, मगर उसने हाथ लहराकर बीच में ही रोक दिया। ठहरो नजीरन। उसके पांव जहां के तहां थम गए, जैसे काट मार गया हो। नजीरन, आज इतनी अजनबियत? वो बदहवासी में बुदबुदाई, मगर मैं तो तुम्हारी नज़्ज़ो हूं। मेरी नज़्ज़ो उसी पल मर गई थी नजीरन, जिस पल मुझे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना पड़ा।
तुम मेरी बात तो सुनो मुश्ताक।
वो बिफर उठी, मैं पूरे 30 साल तुम्हें सुनता रहा। तुमने जो कहा मैं बिना सवाल जवाब किए करता रहा, मगर अब नहीं। लौटकर इसलिए आया हूं कि जान सकूं कि मैं तुम्हारे इम्तिहान में पास हुआ था या फेल। नजीरन के होंठ लड़े, मगर शब्द हलक से बाहर ना आ सके। उसे महसूस हुआ कि गले में कुछ धसक गया है। बस सहमति में सिर हिलाया, आंखें उबल पड़ी। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारा एक पुराना कर्ज है हम पर। उसने जल्दी से कुर्ते की जेब टटोली, अठन्नी निकाल कर उसने आगे बढ़ा दी और बाहर जाने के लिए मुड़ा। फिर एक नज़र पलट कर उसने नजीरन को देखा और बोला, अपना ख्याल रखना।
बदले में वो कुछ कहती, इससे पहले ही मुश्ताक जा चुका था। उसकी आंखें बहुत देर तक शून्य में ताकती रहीं।
शायद मुश्ताक लौटे। वो अब भी पाजेब हाथ में लिए न जाने कहां खोई थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई और दरवाजा खुल गया। सामने सबीहा थी। उसने जल्दी दुपट्टे में अपना मुंह छुपा लिया।
क्या हुआ? कम से कम अंदर आने के पहले इजाजत तो ले लेती।
मुआफ करना बाजी, नवाब साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
नवाब साहब का नाम सुनते ही उसका मुंह कसैला हो गया। उसने सबीहा को हिकारत भरी नजरों से देखा और बिफर पड़ी, जाकर कह दो उनसे नजीरन मर गई। अभी आपने सुनी नज्म सुभाष जी की लिखी कहानी इम्तिहान। गाथा पर इसे आपके लिए प्रस्तुत किया पल्लवी ने।